أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو احمدیت کی تکذیب کی مہم چلا رکھی ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو ملک کے معصوم عوام پر دباؤ ڈال کر ان کے مفادات کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر کے کہ جب تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہیں کریں گے ان کے کام نہیں چل سکیں گے. انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کو ایک عوامی شکل دے دی ہے. ایسی عوامی تحریک نہیں کہ جس میں لوگوں کے دل سے از خود یہ خواہش اٹھے، بلکہ ملک کا قانون مجبور کر رہا ہے ہر پاکستانی شہری کو کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرے، ورنہ بعض مفادات سے محروم رہ جائے. یہاں تک کہ ووٹ کا حق بھی اب کسی پاکستانی کو نہیں مل سکتا جب تک وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہ کرے. اور بکثرت ایسی مثالیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستانی شہریوں میں سے ان کی جو باہر بستے ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا تھے اور کیا واقعتاً خدا تعالیٰ نے انہیں بھیجا بھی تھا کہ نہیں، اس لیے یہ گناہ ہمارے سر پر نہ رکھو. لیکن چونکہ ان کے کام نہیں چل سکتے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے بالآخر ان میں سے بھاری تعداد تکذیب پر دستخط کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. پھر دوسرا طریق تکذیب کا یہ ہے کہ احمدیوں کو ان کے مفادات سے محروم رکھا جانا، ان کے اوپر مظالم توڑنا، ان پر ظلم کرنے والوں کی تائید کرنا، ان کے مال لوٹنے والوں کی حفاظت کرنا، ان کی جان لوٹنے والوں کو حکومت کی چھتری کے تلے امن دینا، اور احمدیت کے حق کے گواہوں کو یا احمدیوں کے حق میں آنے والے گواہوں کو جھٹلا دینا، اور مخالف فریق کے فرضی گواہوں کو بھی تسلیم کر لینا. غرضی کے اس نوع کے بکثرت دباؤ ہیں، نوکریوں سے محرومی، طلباء کو تعلیم کے حق سے محروم کر دینا. روزمرہ کی زندگی میں یہ دباؤ اس کثرت سے ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریق پر احمدی بھی بالآخر احمدیت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ تمام دنیا جانتی ہے और पाकिस्तान में भी अब ये एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हो रहा है कि ये सारे ज़राए अहमदियों को मुर्तद करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स नतीजा निकला है। इतनी शिद्दत और कुव्वत के साथ ईमान उभरे हैं और इखलास में इजाफा हुआ है और कुर्बानियों की नई उमंगें पैदा हुई हैं कि इससे पहले इस कैफियत में ऐसी शिद्दत नज़र नहीं आती थी। और इस तफसील के साथ जमात में ऐसा हौसला, ऐसा आज़म और फिर ऐसे बुलंद इरादे कुर्बानियों के पहले नज़र नहीं आते। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस पहलू से भी हुकूमत को इस कोशिश में नाकाम कर दिया है। और जहाँ तक पहली कोशिश की नाकामी का ताल्लुक़ है, अमरे वाक़िया ये है कि जितनी भी इतलाएँ जमात के दोस्तों की तरफ से मिलती हैं, हर वो पाकिस्तानी जो अहमदी नहीं है, जब वो तकज़ीब पर दस्तखत करता है तो उसके अंदर एक खौफ का एहसास जागता है। वो अपने दिल में ये सवाल उठता हुआ महसूस करता है कि मैं जिस शख्स की तकज़ीब कर रहा हूँ उसके दावे की जांच पड़ताल मैंने कर भी ली थी कि नहीं थी, मैंने उसे उसकी तहकीक करके पूरे इत्मीनान से फैसला किया है कि वो शख्स झूठा है या महज अपने दुनिया के मफाद की खातिर मजबूर होकर और जलील करके तकज़ीब पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं या तकज़ीब करने पर मजबूर किया गया हूँ। ये एहसास एक आम पैदा हो रहा है और ज़मीर को झंझोड़ने का जो सामान हम नहीं कर सकते थे वो अल्लाह की तकदीर इस तरह करवा रही है, वरना इससे पहले अदम दिलचस्पी आम थी, लाइल्मी आम थी। और अमर वाक़िया ये है कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों में गो मुसलमान बटे हुए थे लेकिन अपने फ़िरक़े के मुतलिक बहुत कम उनमें से थे जो जानते थे कि हमारे अकायद क्या हैं, हमारे इस्लाम की नज़रियाती बुनियाद क्या है, इस्लाम के अमली तकाज़े हमसे क्या हैं। एक किस्म की गफलत की हालत में ज़िंदगी गुजारने वाले बज़ाहिर मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए थे और चूंकि इल्म नहीं था इसलिए जमात अहमदिया के मुतल्लिक भी इल्म की कमी की वजह से दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही थी। बहुत कम थे जो मुखालफत इस वजह से करते थे कि वो समझते थे कि जमात अहमदिया झूठी है। भारी तादाद मौलवियों के डर से अवामुन्नास के दबाव के पेश नज़र खामोश तमाशाई थे, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। तो अब पाकिस्तान के कोने कोने में ऐसे इलाकों में भी जहाँ कभी किसी अहमदी ने झांक कर भी नहीं देखा, ना सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम पहुँचा है बल्कि हर जगह ज़मीर को कुचोके दिए गए हैं और कुल्लियतन लाइल्म आदमियों को भी एक ऐसे फ़ैसले पर मजबूर किया गया है जिसका वो मजाज नहीं था। तो इसके नतीजे में जो अहमदियत में दिलचस्पी पैदा हो सकती थी वो हो रही है और उसके असरात अभी से ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। तीसरी कोशिश वसी पैमाने पर इशात की लिटरेचर के ज़रिए हुई और तमाम दुनिया में मुख्तलिफ ज़ुबानों में बास पम्फलेट्स तकसीम करवाया गया है, पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए भी और बरह रास्त भी, जिसमें सरासर किस्ब और इफ्तरा से काम लेकर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी की कोशिश की गई है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर जो जमात के लिए है, खुसूसन पाकिस्तान की अहमदियों के लिए, जहाँ दिन रात अखबारों में भी यही चर्चा चल रहा है और हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च करके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गालियाँ दिलवा रही है और दे रही है और तकज़ीब में किसी भी दुनियावी अकली इंसानी अखलाकी कानून को पेश नज़र नहीं रख रही, ऐसे ऐसे फ़र्ज़ी क़िस्से बनाकर मुख्तलिफ ज़ुबानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ शाया किए जा रहे हैं और तमाम दुनिया में उनकी तशहीर की जा रही है कि अक़ल दंग रह जाती है कि इस महज़ब दौर में भी ऐसी अखलाकी गिरावट के नमूने देखे जा सकते थे। आम इंसान में भी अगर वो चीज़ें पाई जाएं तो एक इंतहाई अखलाकी गिरावट की निशानदेही करती हैं, लेकिन हुकूमतें दहरिया भी हों तो ज़िम्मेदारी का सबूत दिया करती हैं। उनकी ज़ुबान के कुछ असलूब हैं, कुछ शाइस्तगी है जिनकी वो पैरवी करती हैं, और खाक कितना ही बुरा किसी फरीक को, किसी दुश्मन को समझें, उन दुनियावी रस्मी तकाज़ों को हमेशा मलहूज रखती हैं। लेकिन एक नमूने की हुकूमत दुनिया में ऐसी ज़ाहिर हुई है जिसने तमाम अखलाकी तकाज़ों को तोड़ के फेंक दिया है, और एहरार की आमियाना ज़ुबान जो मोची दरवाज़े में कभी सुनी जाती थी, या अमृतसर के बाज़ारों में सुनी जाती थी, या कादियान पर जब इनके फ़र्ज़ी फातह कादियान हमले किया करते थे उस वक्त वो ज़ुबान सुनाई देती थी, अब वो हुकूमत की ज़ुबान बन गई। और पूरी तरह इस हुकूमत के मिजाज पर, इसके किरदार पर, इसकी तर्ज हुकूमत पर एहरारियत का कब्ज़ा हो चुका है। चुनांचे यही तस्वीर इस हुकूमत की सारी दुनिया में उभर रही है, जब वो अहमदियत पर और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मन घड़त इल्ज़ामात बनाकर हमले करते हैं। इनमें से एक छोटा सा रिसाला जिसका नाम है कादियानियत या कादियानी इस्लाम के लिए एक संगीन ख़तरा, उसे वाइट पेपर के नाम पर सारी दुनिया में बड़ी कसर से शाया किया गया है। एक गुज़श्ता जुमा में मैंने इस बात का इजहार किया था कि मेरा इरादा है इंशाल्लाह उसके मुतालिक ख़ुद एक एक एतराज़ को सामने रख कर कुछ बयान करूँगा, लेकिन इस अरसे में मुख्तलिफ जमात के उलमा और लिखने वालों ने अपने तौर पर भी कोशिशें की, बाज़ों को मैंने पैगाम भिजवाए और उन्होंने बहुत अच्छे मजामीन लिखे। चुनाचे कुछ अच्छे मजामीन अब किसी इरशाद के लिए तैयार भी हो चुके हैं। ताहम मजामीन का हर अहमदी तक पहुंचना मुश्किल है, और खुतबात के ज़रिए जितना राबता कसीर और गहरा राबता जमात से मुमकिन है और किसी ज़रिए से मुमकिन नहीं है, और एक हिस्सा जमात का गैर तालीम याफ्ता भी है और एक हिस्सा ऐसा है जहाँ रिवाज ही नहीं पढ़ने का, और बाद लोगों के मिजाज में भी पढ़ने की आदत नहीं होती, तो इसलिए जो कैसेट्स के ज़रिए राबता और कैसेट्स का तर्जमा करके मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो मुरब्बियान फौरी राबता करते हैं जमातों से, इसके मैंने बहुत फ़वाद देखे हैं, और ये एक बहुत ही मौसर और वसी राबते का ज़रिया है। इसलिए वो इल्मी कोशिशें जो हैं वो अपनी जगह नहायत मुफीद हैं और उनसे इस्तफादा किया जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने इजहार किया था मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह इस मौजू पर कुछ ना कुछ कहूँगा, लेकिन आज के खुतबे में पहले मैं इसका पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ और मुख्तसरन जो एतराज़ दोहराए गए हैं उनका ज़िक्र करूँगा, और बाद में अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के मुताबिक या तो खुतबात में एक सिलसिलावार जवाब दूँगा या फिर किसी जलसे के मौके पर जब ज़्यादा वक्त मुहैया हो बाज़ मज़ामीन को वहाँ इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। इसका पस मंज़र जमात को मालूम होना चाहिए, और वो एक बाकायदा गहरी साजिश के नतीजे में जो लंबी कोशिशें हो रही हैं उसको वो पस मंज़र ज़ाहिर करता है, और अमूमन लोगों को रब्त के साथ ये मालूम नहीं कि क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है, और मौजूदा वाक़यात की कौन सी कड़ियाँ 74 के वाक़यात से मिलती हैं। कुछ पस मंज़र तो इस रंग में है कि ये जो जमात के ख़िलाफ़ जदोजहद है ये मरबूत रंग में किस तरह आगे बढ़ी है और अब क्या किस शक्ल में ज़ाहिर हुई है, और एक पस मंज़र है जिसका गैर मुल्की ताकतों से ताल्लुक़ है, गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ है। बड़ी बड़ी इस्तेमारी ताकतें हैं जो इसकी इन कोशिशों की पुष्टपनाही कर रही हैं, जिनके बद इरादे एक बाकायदा मंसूबे की शक्ल में आज से साल हा साल पहले ब्लूप्रिंट की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, बकायदा तहरीर में बातें आ चुकी थीं, बकायदा आपस में मामला तय हो चुके थे। अरबों रुपया तो कम अज़ कम 20 साल का से तो मैं जानता हूँ कि एक मनसूबे के तहत जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ और उसके लिए बकायदा जमातों को तक़वीयत दी गई और जो मुल्की हालात हैं पाकिस्तान के उनमें दखल अंदाजी का भी इसको ज़रिया बनाया गया। उसकी बहुत सी तफासील हैं, उसका अगर मौका हुआ या ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह बाद में ज़िक्र करूँगा। 1974 के साथ इस मौजूदा मुहिम का एक गहरा ताल्लुक है और 1974 की बुनियाद भी पाकिस्तान के 73 के आईन में रख दी गई थी और बाज़ ऐसे उसमें बाज़ फ़िकरात में ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए गए थे जिसके नतीजे में जहन इस तरफ मुतवज्जे रहे और जमात अहमदिया को बाकी पाकिस्तानी शहरियों से एक अलग और निस्बतन अदना हैसियत दी जाए। चुनाचे उसकी तरफ मैंने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस की खिदमत में अर्ज़ किया, तवज्जो दिलाई और जिस तरह भी मुमकिन था जमात मुख्तलिफ सतहों पर उसके मुतल्लिक़ कोशिश करती रही, लेकिन उन कोशिशों के दौरान ये एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हुआ कि ये एक हुकूमत का काम नहीं, एक लंबे मंसूबे की कड़ी है और इस मामले ने आगे बढ़ना है। बहरहाल 74 में वो बात पूरी तरह खुलकर सामने आई। 74 में जो हुकूमत उस वक्त पाकिस्तान को नसीब थी उस हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में एक नुमाया फ़र्क है। वो हुकूमत हयादार थी, उसे अपने मुल्क के बाशिंदों की भी हया थी और बैरूनी दुनिया की हुकूमतों की भी हया थी, दुश्मनी में कमी नहीं थी। जहाँ तक मंसूबे का ताल्लुक़ है और जमात की बुनियादों पर संगीन हमला करने का ताल्लुक़ है, दोनों में ये कदर मुश्तरक है। भुट्टो साहब के ज़माने की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में इस पहलू से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जहाँ तक हया का ताल्लुक़ है उसमें नुमाया फ़र्क है। भुट्टो साहब एक अवामी लीडर थे और अवाम की महब्बत के दावेदार थे और वो चाहते थे कि अपने मुल्क के अवाम में वो एक हरदिल अज़ीज़ लीडर रहें और उनको ये महसूस ना हो कि मैं धांधलियाँ करके आमिराना तरीक़ इख्तियार करता हूँ सवाए इसके कि अशद मजबूरी हो। तो जमात अहमदिया के मुतल्लिक जो इक़दामात उन्होंने किए उनसे पहले उसे एक अवामी अदालत का रंग दिया और नेशनल असम्बली में वो मामला रखा गया और जमात को भी अपने दिफा का एक मौका दिया गया और बैरूनी दुनिया में भी उनकी तमन्नाएं बहुत वसी थीं। वो सिर्फ पाकिस्तान की रहनुमाई पर राज़ी नहीं थे बल्कि अपना असर रसूख इर्द गिर्द के इलाकों में फैलाना चाहते थे और मशरक़ बईद के लीडर के तौर पर जिस तरह नेहरू उभरा था उस तरह उनकी तमन्ना थी कि वो भी पाकिस्तानी रहनुमा के तौर पर सिर्फ नहीं बल्कि मशरक़ बईद के एक अजीम रहनुमा के तौर पर उभरें और तमाम दुनिया में अपनी सियासत का लोहा मनवाएं। इस वजह से भी चूंकि बैरूनी दुनिया की शर्म थी उनकी आँख में, वो चाहते थे कि उनके सामने जमात का मामला इस रंग में रखा जाए कि गोया वो बिल्कुल मजबूर और बेख्तियार हो गए थे और उसके बावजूद उन्होंने अवामी दबाव को बराह रास्त कबूल नहीं किया और पूरी तरह जमात अहमदिया को मौका दिया वो अपने मसले को पेश करें और उनके सरबराह को बुलाकर उनके साथ चंद आदमियों को बुलाकर एक लंबा अरसा नेशनल असम्बली ने इस बात पर वक्त सर्फ किया और सोच विचार के बाद उसके बाद ये नतीजा निकाला है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस हया का यहाँ फुकदान है इसलिए कि ना अवामी हुकूमत है ना बैरूनी दुनिया में किसी राय आमा की कोई परवाह है और एक आमिर ही होता है बहरहाल, इसलिए बज़ाहिर वो जितनी मर्ज़ी कोशिश करे लेकिन आमिरियत के साथ ये फ़ैसला लाजिम है कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी दुनिया कहे उसकी परवाह नहीं, कोशिश कर देखेंगे, मुफ्त में हाथ आ जाए दुनिया की हजील अजीजी तो ठीक है, लेकिन ना भी आए तो आमरियत तो पीछे नहीं हटा करती। इसलिए आमरियत में जो हया का फुकदान है वो मौजूदा मुहिम में बिल्कुल ज़ाहिर व बाहर है। उस हुकूमत ने अपने फैसले के दौरान जमात को मौका तो दिया और 14 दिन नेशनल असेंबली में सवाल और जवाब हुए, जमात ने अपना मौक़ तहरीरी भी पेश किया, लेकिन साथ वो होशियार और कायां हुकूमत भी थी। उस दौरान ही उन्होंने महसूस कर लिया कि अगर ये बातें आम हो गईं और जो सवाल जवाब हो रहे हैं असेंबली के, जो कार्रवाई की जा रही है, अगर ये इसकी तमाम रुएदाद दुनिया के सामने पेश कर दी गई तो हमारा मकसद हाल नहीं हो सकेगा, बल्कि बरक्स नतीजा निकल सकता है। और ऐन मुमकिन है कि बजाय इसके कि लोग कहें कि जमात को हर किस्म का हक देने के बाद एक जायज़ फैसला हुआ है, बिल्कुल बरक्स नतीजा ये दुनिया निकाले कि जमात तो बहुत ही ज़्यादा मजलूम साबित हुई है। इतने मजबूत दलायल, इतने कवी दलायल, और जो अकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं है। चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िका फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर इंशा करें और इनका झूठ दुनिया पर जाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूँ आधा तो उनकी कसर नफसी थी, अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़ पहुँच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए, स्वाइस के उन चंद महरूमों के जो हमेशा महरूम रहते हैं, उनके मुकद्दर में हदायत नहीं होती। मैं युज़लिल हो फला हादी अला, कोई दुनिया की ताकत उन लोगों को हदायत नहीं दे सकती जिनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देना चाहता। तो ऐसे इस्तिस्नात तो मौजूद हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान की भारी अक्सरियत से हुस्ने ज़न है कि उन तक अगर जमात अहमदिया का मौक़ सही पहुँचे, खुसूसन इस दौर की नस्लों तक जो निस्बतन ज़्यादा माकूली रंग रखती हैं और तकलीद की उतनी कायल नहीं रहीं जितनी पिछली नस्लें कायल थीं, तो यकीनन उनकी एक भारी अक्सरियत बफजल ताला अहमदी हो जाएगी। चुनाचे इस हुकूमत ने इसकी पेशबंदी ऐसे की कि जमात अहमदिया के ऊपर यकतरफा हमले तो किए लेकिन जवाब की इजाज़त ही नहीं दी, मौका ही नहीं पैदा होने दिया। हमलों से पहले ही ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया कि जमात का वो लिटरेचर जब्त हो जाए जिससे जिसमें इनके हम आइंदा किए जाने वाले हमलों का जवाब मौजूद है। और ये जो तजाद पाया जाता है हुकूमत की पॉलिसी में, इससे बज़ाहिर एक बेअखली की बात भी नज़र आती है, लेकिन बेअखली से ज़्यादा इसमें शरारत और चालाकी पाई जाती है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का लिटरेचर इसलिए जब्त किया जा रहा है कि उससे पाकिस्तान के लोगों की दिलदारी होती है, और दूसरी तरफ उसमें से सिर्फ वही जुमले निकाल कर शाया किए जा रहे हैं जिनसे वो दिलदारी होती है उनके ख्याल के मुताबिक। कैसी अहमकाना बात है कि कह ये रहे हो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें हम इसलिए जब्त कर रहे हैं कि उनसे मुसलमान अवाम की, खुसूसन पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी होती है, और उस दिल आज़ारी का इलाज ये किया है कि वो हिस्से जिनसे दिल आज़ारी नहीं होती उनको शाया करना तो कानून बंद कर दिया, और जिनसे तुम्हारे जोम में दिल आज़ारी होती है उनको गवर्नमेंट के खर्च पर करोड़ों रुपया खर्च करके सारी दुनिया में फैला रहे हो। तो बज़ाहिर तो ये तज़ाद है, लेकिन ये तज़ाद एक चालाकी के नतीजे में है, एक बेईमाना गंदा नापाक हमला इन्होंने करना ही था। चूँकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में उसके जवाबात मौजूद हैं, और हर शरीफ़ नफ्स इंसान जो उन किताबों का मुतालिया करता है, जब वो सियाक व सबाक को देखता है तो जो एतराज़ की जगह है वो खुद ब खुद हल हो जाती है। चुनाचे असम्बली के नेशनल असम्बली की कार्रवाई के दौरान, चूँकि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे भी मौका दिया था साथ जाने का, मैंने और मेरे सब साथियों ने बात बड़ी हैरत के साथ मुशाहदा की कि हमारी तवक्को से भी बढ़कर हमेशा ये वाकया हुआ कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब पर कोई हमला किया गया तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस उसका कुछ हिस्सा पहले से पढ़कर, पहले से और कुछ हिस्सा बाद का पढ़कर सुना देते थे, और उसके बाद किसी जवाब की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। सुनने वालों के चेहरों पर इत्मीनान आ जाता था कि यह हमला फ़र्जी है, कतर बेवंद का नतीजा है, इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं सच्चाई से, और बाज़ जगह वजाहत की ज़रूरत पड़ती थी तो करते भी थे। लेकिन हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात अपनी ज़ात ही में अपने अंदर काफ़ी जवाब रखती हैं। सिर्फ अगर सियाक व सबाक से अलग करके एक टुकड़े को निकाल कर गलत रंग में तहरीफ के तौर पर पेश किया जाए तो उससे दिलाज़ारी हो सकती है, क्योंकि वो मकसद नहीं है, वो बात हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहना ही नहीं चाहते जो आपकी तरफ मंसूब की जा रही है। तो दिलाज़ारी बना कर यानी घड़ कर वो तो शाया की जा रही है, और दिलाज़ारी का जवाब छुपा लिया गया। तो ये थी इस हुकूमत की हिकमत अमली, जिसके नतीजे में इस वाक़या से पहले ही किताबें जब्त होनी शुरू हो गई थीं, और उसके बाद फिर किताबें छोड़ के प्रेस भी जब्त हो गए, रिसाले भी बंद हो गए। ये बुजदिली हमेशा कमज़ोरी की निशानी हुआ करती है, और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। कोई दुनिया की ताकत जो दलाइल में कवि हो वो हथियार नहीं उठाया करती, और कानूनी रोकें दूसरे की बात के बयान करने के राह में नहीं डाला करती, अकल के ख़िलाफ़ है, उनके अपने मुफाद के ख़िलाफ़ है। इसलिए तमाम कानूनी कोशिशें जो इस बात में सर्फ की जा रही हैं कि किसी तरह जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ तो हमले हो जाएँ लेकिन जमात अहमदिया को जवाब का मौका ना मिले, ये शदीद बुजदिली की इलामत है, और अपनी शिकस्त का आखिरी एतराफ़ है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक तरफ जमात अहमदिया को इतना कम तादाद बताया जा रहा है कि 70-80 हज़ार से ज़्यादा इनकी हैसियत कोई नहीं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा आलम इस्लाम के लिए ख़तरा कि ऐसा ख़तरा ही कभी नहीं आया था। और फिर लिटरेचर की जब्ती, ये तमाम इकदामात, और फ़ख्र ये इस बात पर है कि इस ख़तरे का हमने हल कर दिया। चुनाचे गुज़श्ता हुकूमत के साथ उसके इकदामात से मुआवजा करते हुए मौजूदा हुकूमत ने जो मुबैना वाइट पेपर शाया फरमाया है उसमें लिखते हैं कि गुज़श्ता नेशनल असम्बली का वाकई ये बड़ा कारनामा था, बावजूद इसके कि वो नेशनल असम्बली इनको डिसॉल्व करनी पड़ी, तहलील करनी पड़ी इस इल्ज़ाम के नतीजे में कि सारे गंदे और बदकार लोग हैं इल्ला माशाल्लाह, उसके बावजूद ये कारनामा इन्होंने तस्लीम किया, क्योंकि वहाँ कमाश मिलती थी, एक ही रंग की अदाएँ थीं, इसलिए वो तो तस्लीम करनी पड़नी थी। तो तस्लीम ये करते हैं कि उस असम्बली का बहुत अजीम शान कारनामा था कि 100 साल मसला उन्होंने हल कर दिया, लेकिन 100 साल मसला पूरी तरह हल नहीं हो सका उनसे, क्योंकि जो कवानीन रहते थे वो हमने हमारे मुकदमे लिखे हुए थे, چنانچہ ہم نے وہ قوانین اختیار کر کے اب اس جماعت کا ہمیشہ کے لیے قلع قمع کر دیا. اور وہ مسئلہ کس طرح حل ہوا, مسلمان خطرے سے بچائے کس طرح گئے, وہ آگے آخر پہ لکھا ہے. سب سے وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیا, رب عالم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں رہا جماعت کی طرف سے کہ اذان دینی بند ہو گئی, مسلمان کہلانا بند ہو گیا, کلمہ نہیں یہ پڑھ سکتے اور لکھ سکتے, اور مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اور مسلمانوں والی ادائیں اختیار نہیں کر سکتے, قرآن کریم پر احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. اب ہم کتنے راضی ہیں, کتنا عظیم شان ہم نے مسئلہ حل کیا ہے. یہ آخری نتیجہ نکالا گیا. حماقت کی بھی حد ہوتی ہے, یعنی چالاکی کے اندر بھی حماقتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ. وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس سچائی نہ ہو وہ چالاکی سے اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور سچائی نہ ہونے کے نتیجے میں چالاکی کے اندر ایک بے وقوفی شامل ہو جاتی ہے, وہ ضرور ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو. اس لیے یہ اندرونی تضاد, یہ بے وقوفیاں, یہ سب ایک جھوٹی چالاکی کا نتیجہ ہیں. سچی عقل کے نتیجے میں یہ تضاد پیدا نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال اس حکومت نے یہ طریق اختیار کیا اور اپنے آپ کو بھٹو حکومت سے زیادہ چالاک سمجھا. انہوں نے کہا ان سے تو بیوقوفی ہو گئی تھی, ان کو موقع دے دیا سوال جواب کا. چنانچہ وائٹ پیپر میں یہ بھی لکھا گیا کہ دراصل تو جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے گفت و شنید کرنی ہی نہیں چاہیے, دلائل سے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا ہی بیوقوفی ہے. اس لیے جو علاج ہم نے تجویز کیا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. اور اس کے باوجود ساری دنیا میں الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری کر دیا. لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کی کوششیں ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون, کہ ایسے لوگ جو منافقانہ رنگ رکھتے ہیں, دعوے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اعمال ان کے کچھ اور ہوتے ہیں, باتیں حکمت کی کرتے ہیں اور نہایت ہی احمقانہ حرکتیں حکمت کے ساتھ ساتھ بھی جاری رہتی ہیں, ان کی کوششیں کبھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. وہ آگ تو ضرور بھڑکا دیا کرتے ہیں, لیکن آگ سے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس تماشے سے محروم کر دیا کرتا ہے, ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے. آگ تو وہ جلانے کے لیے بھڑکاتے ہیں, لیکن وہی آگ ان کو اپنے نور سے بھی محروم کر دیتی ہے. ذهب الله بنورهم, اور پھر ان کو ایسے ظلمات کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی عملاً بالآخر جماعت احمدیہ کے فائدے کا موجب بنی ہے اور بنتی چلی جائے گی, اور عملاً جماعت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے آسان تک رہو شیوں وہو خیر لکم, کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور تم سے بھی ایسا ہوگا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, تمہارے دل دکھتے ہیں, تکلیف پہنچتی ہے, وہو خیر لکم, لیکن بہرحال وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے. بچوں کو تم کڑوی دوائیاں پلاتے ہو, ٹیکے کرتے ہو, چیختے چلاتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور بس نہیں جانے دیتے, کوئی پیش نہیں جانے دیتے. تم اپنے بچوں سے یہ سلوک کرتے ہو جانتے ہوئے کہ بالآخر اس میں ان کا فائدہ مضمر ہے. تو ہم بھی بعض دفعہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں کریں گے کہ جن سے تمہیں انتہائی تکلیف پہنچے گی, لیکن بالآخر وہ تمہارے لیے فائدہ کا موجب ہوں گی. چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو پاکستان کی حکومت نے ساری دنیا میں لٹریچر شائع کروایا ہے, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جماعت کی طرف توجہ شروع ہو گئی. بعض لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کوئی جماعت بھی ہے دنیا میں. ان تک یہ اطلاعیں پہنچیں, سارے دنیا کے اخباروں نے ان معاملات کا نوٹس لیا, اور احمدیت اپنی شہرت کے لحاظ سے, معروف ہونے کے اعتبار سے, آج اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے قبل کے وقت سے کم 20 گنا زیادہ معروف ہو چکی ہے. यानी तमाम अमेरिका में तमाम इलिस्तान में जब लोगों की भारी अक्सरियत आपसे बिल्कुल नावाकिफ थी, एक दो मिशंस के जरिए करोड़ों की आबादी को हिलाया तो नहीं जा सकता, दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन जिन हालात से जमात गुजरी और मसाइब का से दोचार हुई उसके नतीजे में एक इंसानी हमदर्दी पैदा हुई और उस हमदर्दी के नतीजे में जमात के मामले में दिलचस्पी पैदा हुई, जमात के लिटरेचर को लोगों ने पढ़ना शुरू किया और पूछने लगे कि तुम हो क्या। फिर उसके अलावा जो कसर रह गई थी वो हुकूमत पाकिस्तान के इस बेईमाना लिटरेचर ने पूरी कर दी, क्योंकि उनके लिटरेचर की तर्ज ही ऐसी है जिससे अंदाज़ा हो जाता है एक मकबूल आदमी को कि है बीच में कोई दाल में काला काला, ज़रूर कोई ऐसी बात है जो एक तरफ जमात कहते हैं कि हैं ही थोड़े से चंद हज़ार आदमी 100 साल में जो सारा जोर लगाने के बावजूद 70,000 से ज़्यादा ना बढ़ सके, उनसे एक इतनी बड़ी करोड़ों की हुकूमत खायफ हो जाए और सारे आलम इस्लाम के लिए ख़तरा करार दे रही हो, इतनी अहमकाना बात हर आदमी तो हज़म नहीं कर सकता। इसलिए उस मज़मून को पढ़ने के नतीजे में ख़ुद ही एक ऐसा आदमी भी जिसको जमात के मुतल्लिक कुछ भी इल्म ना हो अपने अंदर एक हमदर्दी महसूस करता है, कम से कम मालूम करने की जस्तजू उसमें ज़रूर पैदा हो जाती है। अब जमात इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से हमारे लिए एक और मौका बहुत अच्छा हाथ आ गया जिसे हम पहले खो चुके थे और इनकी चालाकी उलट पड़ गई है। गुज़श्ता हुकूमत ने जो हाथ बांधे हुए थे हमारे वो हाथ खोल दिए उन्होंने हमें मौका दिया अपने जवाबात का और साथ पाबंद कर दिया कि ये सवालात और ये जवाबात तुमने दुनिया को नहीं बताने। इस हुकूमत ने सवालात की चोरी वहीं से की है क्योंकि मैं तो गुजरा हूँ उससे, उन हालात से मुझे पता है। तमाम सवालात वही हैं मिनोन जो नेशनल असम्बली में उठाए गए थे। तरीक़ ये अख्तियार किया गया कि उनमें से कुछ तो वाइट पेपर्स में शामिल कर लिए गए, कुछ एक रिसाला है तो वो चीथड़ा लेकिन बहरहाल रिसाले के नाम से मशहूर है, उर्दू डाइजेस्ट, उसको पता नहीं कितने लाख रुपया दिया है इन्होंने। वो सारे का सारा रिसाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर सरासर झूठे इल्ज़ाम का एक पुलंदा बनाकर शाया किया गया, नहायत तहजीब से गिरी हुई आमियाना बातें जिसे शरीफ आदमी पढ़कर वैसे ही उठा के एक तरफ फेंक देता है। ऐसा चीथड़ा है कि उसमें तो अगर कोई पकौड़े भी बेचे तो शायद खाने वाला उन पकौड़ों को भी नापाक समझ के फेंक दे, और उसे एक नहायत अज़ीम-उश्शान शानदार रिसाले की शक्ल बनाकर शाया किया गया। और बाकी जो इतराज़ रह गए थे वाइट पेपर से वो सारे उसके अंदर आ गए, एक मंसूबा था बाकायदा। और अब बाज़ अहरार के नहायत ही ज़लील किस्म के चीथड़े हैं जो इश्तहारात की शक्ल में शाया होते रहते हैं रोज़ रोज़, जिनकी तरफ पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की शरीफ अवाम कभी तवज्जो नहीं करते। उनको इतनी अहमियत दी जा रही है कि इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री खरीद खरीद के उनको सारी दुनिया में एम्बेसीज में भिजवा रही है, गोए एम्बेसीज को होश होगी वो पढ़ने की। किसी दिन देखें तो जाके एम्बेसीज में कि उस लिटरेचर का बनता क्या है जमात के खिलाफ वो शायद वहाँ पहुँचाते हैं। आजकल तो सर्दी का ज़माना है, कोई बेइज्जती नहीं कि वो जला कर उससे हाथ सेके जा रहे हों और उसका बेहतर मसरफ किया जा रहा हो, तो ना इनको होश, उनको अपनी होश नहीं है दूसरी चीज दिलचस्पियों से, वो यूरोप और अमरीका के ऐशो इशरत से आंखें बंद करके अपने मफादात से मुंह मोड़ के क्यों वक्त ज़ाया करें जमात अहमदिया के मुतल्लिक यकतरफा बातें पढ़ने में। और जो डिप्लोमेटिक सर्विस में रह चुके हैं उनको पता है कि बाहर अमरीशों में होता क्या है, इस किस्म के लिटरेचर की हैसियत क्या होती है। सिर्फ एक सरसरी सा उनको नज़र आ जाता है कि ये टाइटल आ गया और बस ख़त्म, और याद दहानी हो जाती है कि जमात अहमदिया भी वजूद है, इसकी जो तवज्जो करो, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। या फिर वो जलता है तो कोई चाय गर्म कर देता होगा या हाथ सेंक देता होगा, तो वो भी अब कर रहे हैं। यानी नहायत गंदा मकरूह शक्ल का लिटरेचर बाकायदा हुकूमत वफ़ की तरफ से ख़रीद करके बाहर की एम्बेसीज को भिजवाया जा रहा है और समझते हैं कि हम अज़ीम-उश्शान कारनामे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनका जवाब दिया जाएगा। तैयार हो चुके हैं जवाब, और जहाँ तक खुतबात का ताल्लुक है उसमें तो बहुत सी ऐसी ज़रूरियात पैदा होती रहती हैं कि तसलसल लाजमन तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक खुदा तौफीक दे कुछ हिस्सा खुतबात की शक्ल में और कुछ हिस्सा निस्बतन लंबी तकरीरों की सूरत में मैं बयान करूँगा, और वो जो मौका हाथ से निकल गया था कि सारी दुनिया तक अपनी बात एक मुनाज़रे की शक्ल में पहुँचाई जाए और ये बताकर पहुँचाई जाए कि हुकूमत पाकिस्तान का ये मतलब था, ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो हमें काफिर समझते हैं या गैर मुस्लिम समझते हैं, वो वजूहात तो हम बता ही नहीं सकते थे, हमारे कानून ने हम हाथ बांधे हुए थे और हम अपने वादे के पक्के हैं, इसलिए मजबूर थे, हम नहीं शाया कर सकते थे। अब उस पर हुकूमत की मोहर लग गई है, अपना मौक़िफ़ उन्होंने बता दिया, अब हमारा मौक़िफ़ जो है वो हम ही बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और जिस रंग में चाहेंगे बताएंगे, सारी दुनिया को बताएंगे, हर ज़ुबान में बताएंगे, ये तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, हैसियत ही कोई नहीं इनकी। दलाइल के सामने अगर ठहरना होता तो अपने मुल्क में ना हमें मौका दे देते, दलाइल के सामने ठहरने का अगर हौसला होता तो किताबें जब्त करने की क्या ज़रूरत थी, अखबार बंद करने की क्या ज़रूरत थी, प्रेसों को ताला लगाने की क्या ज़रूरत थी, बुज़दिल कौम है, इनके तो पाँव ही कोई नहीं, अदना सी भी जरूरत होती तो जमात को मौका देते कि वो भी जवाब दें, लेकिन मौका तो हमसे छीन नहीं सकते, हम तो हर जगह पहुंचाएंगे इस जवाब को और पाकिस्तान में भी पहुंचाएंगे, अब देखें तो सही इंशाल्लाह ताला। कोई दुनिया की ताकत जमात अहमदिया की तरक्की को रोक नहीं सकती क्योंकि खुदा की कायम करदा जमात है। रहा यह सवाल कि ये जमात अहमदिया के ये हालात कब तक रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है इसके मुतल्लिक तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहकर ये अब आज का खुतबा, आज का खिताब ख़त्म करूँगा कि बाद लोगों के ख़तों से कुछ मायूसी का सा रंग झलक रहा है जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। मायूसी नहीं कहना चाहिए, मायूसी के सिवा कोई नाम होना चाहिए, वो मायूस तो नहीं है खुदा की रहमत से, लेकिन नतीजा जो निकाल रहे हैं उसमें बहुत जल्दी की जा रही है, उजलत से काम लिया जा रहा है। वो समझते हैं कि जो मौजूदा तकदीर है ये गुज़श्ता मुखालफतों से इस रंग में भी मुख्तलिफ है कि अब गालबन इस मुल्क से हमारे मरकज़ को हिजरत करनी पड़ेगी, और एक लंबा अरसा है मुश्किलात का, और वो साथ ये भी यकीन रखते हैं कि इसके नतीजे में अज़ीम-ए-शान फतूहात होंगी जैसा कि हमेशा होती आई हैं, लेकिन ये नतीजा बहुत जल्दी निकाल लिया गया है। मैं तो बिल्कुल ये नतीजा निकालने पर रजामंद नहीं हूँ, तारीख दोहराया करती है अपने आप को, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि लफ्जन लफ्जन दोहराए, वही शक्लें वही सूरतें वही नाम 100% जाहिर हो जाएं, दोहराती है असूलों के तौर पर, और वो असूल कुरान करीम ने महफूज फरमा दिए हैं, वो असूल तो ज़रूर दोहराए जाएंगे क्योंकि वह सुन्नतुल्लाह कहलाते हैं और सुन्नत अम्बिया बन जाया करते हैं, लेकिन उन असूलों के नकूश मुख्तलिफ भी हो सकते हैं जो अमलन जिस तरह वो जारी हों उनकी शक्लें बदल सकती हैं, और फिर ये फैसला कर लेना कि अब ये वाकया यूं जाहिर हो गया है, इस ये तो जब तक अल्लाह ताला खुद खबर ना दे दे वाज़े तौर पर या तकदीर इस तरह खुलकर सामने ना आ जाए कि उसे तस्लीम किए बगैर चारा ना हो, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। खुदा की किसी तकदीर से हम नहीं डरते, खुदा की किसी तकदीर से हम नाराज़ नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए आपको ताकीद करता हूँ कि जल्दी ना करें इस फैसले में, क्योंकि जब आप ये फैसला करेंगे तो आपकी दुआओं में कम हिम्मती आ जाएगी, आपकी दुआओं की बेकरारी कुछ कम हो जाएगी, आप समझेंगे कि लंबा मामला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता आया है इस तरह, और वो जो बेताबी और बेकरारी की दुआएँ थीं उनमें वो शिद्दत नहीं रहेगी, ये बड़ा नुकसान है। इसलिए तकदीर तो वही चलेगी जो खुदा की तकदीर है, उसको तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दुआओं और इल्तिजाओं का हौसला क्यों नीचा करते हैं। सिपाही तो वो होता है जो आखिर वक्त तक मैदान में लड़ता रहता है और सीने पे गोली खाता है, तो हम खुदा की तकदीर से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन खुदा की तकदीर ने खुद ही हमें अपनी तकदीर के मुकाबले का एक गुर भी सिखाया हुआ है, और वह है आजाना दुआएं। اور عاجزانہ دعاؤں کی تقدیر بھی ایک الگ تقدیر ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقدیر بعض دفعہ ایسی قوی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے میں اپنی تقدیر بدل دوسری تقدیر بدل لیا کرتا ہوں اور دعاؤں کی تقدیر کو غالب کر دیا کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم الشان معجزہ عرب میں رونما ہوا اس کا تجزیہ فرمایا وہ یہی تھا کہ قوم نے جو سلوک فرمایا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نتیجہ تو صرف یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ساری قوم ہلاک ہو جاتی اور تہ بالا کر دی جاتی. نوح کی قوم سے زیادہ وہ اس بات کی سزاوار تھی کہ ایک فرد بشر بھی ان مخالفین میں سے باقی نہ چھوڑا جاتا. وہ جو طائف کے بعد واقعہ گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اس میں یہی تو حکمت ہے جو ظاہر کی گئی ہے کہ ہر گندے سلوک پر خدا کی تقدیر یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہلاک کر دے. لیکن اے محمد تیرے دل کی آرزو بھی ایک تقدیر بنا رہی ہے خدا کے نزدیک, تیری عاجزانہ دعائیں اور التجائیں بھی ایک تقدیر بنا رہی ہیں اور وہ بھی خدا کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں. اور میرے نزدیک تیرے جذبات تیری دعائیں ہر دوسری تقدیر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, اس لیے تیرے منشا کے بغیر تجھ سے پوچھے بغیر کہ اس قوم کے ساتھ میں کیا سلوک کروں میں اپنی دوسری تقدیر ظاہر نہیں کروں گا. لیکن دوسری تقدیر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر تیرا دل چاہتا ہے, اگر تو اتنا بیزار اور دکھی ہو چکا ہے کہ ان کو مٹانے پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اور وہ دو پہاڑوں کو اس طرح اکٹھا کر دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے طائف کی بستی کا نشان دنیا سے مٹ جائے گا. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو تقدیر مخفی تقدیر الہی کے اظہار کے طور پر ہمارے سامنے آیا, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی وقت تو خدا کو پیارے نہیں تھے, صرف وہی ایک دور تو نہیں تھا جس میں آپ نے دکھ اٹھایا اللہ کی راہ میں. ہر آن آپ کے دل پر ایک قیامت ٹوٹا کرتی تھی, ہر روز وہ خدا کی خاطر اپنی جان قربان کرتے چلے جاتے تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اب تو ہر روز مرتے تھے خدا کی خاطر اور ہر روز خدا کی طرف سے زندہ کیے جاتے تھے. اس لیے یہی وہ تقدیر تھی جو مسلسل جاری رہی ہے اور اس کے مقابل پر آپ کی دعائیں بھی مسلسل جاری رہی ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالآخر محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کی تقدیر غالب آ گئی اور آسمان پر سنی گئی, اور وہ قوم جس کی ہلاکت مقدر ہو چکی تھی اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی. اس آقا کے غلامی کے آپ دعوے دار ہیں, اسی کے نقش قدم پر چلیں, اس قوم کی ہلاکت میں جلدی نہ کریں بلکہ اس قوم کے احیاء کے لیے التجائیں کریں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور جلد تر یہ قوم سمجھ جائے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 1984 کا سال احرار کا سال تھا اور انشاءاللہ 1985 کا سال جماعت احمدیہ کا سال ثابت ہوگا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ,
إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر